Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाजन और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए रुएकार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और खतो खताबत के जरिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे रब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।
स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोसेस, कैसे एक न्यू बिलीवर को हमने ट्रेनिंग देनी है और कैसे हमने अपने चर्च के सिस्टम को डेवलप करना है ताकि जो लोग हमारे पास आते हैं उनको हम बड़ी अच्छी तरह से मिनिस्टर कर सकें। 8 points हैं, 8 steps में हम स्टडी करेंगे कि नए ईमानदार को हमें कैसे इनकरेज करना चाहिए, कैसे हमें सिखाना चाहिए। पहली बात हम देखेंगे, एक खादम के लिए यह जरूरी है कि नए आने वाले ईमानदार को इस बात की अश्योरेंस दिलाई जाए कि उसके गुनाह माफ हो चुके हैं। वो माजी में जैसा भी था, उसकी जिंदगी, हालात, रवैये जैसे भी थे, लेकिन अब उसके गुनाह माफ हो चुके हैं। पहला यूहन्ना 2:12-13 आयत इस सिलसिले में आपकी हेल्प करेगी। दूसरी बात जो हमें न्यू बिलीवर्स को सिखानी है कि दुआ कैसे करनी है, और जो चर्च में सीनियर लोग हैं, पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, उनके साथ मिलके जो न्यू कमर्स हैं वो दुआ करें ताकि दुआ करना सीखें। यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों के साथ दुआ करता था और उन्होंने देखा कि इसकी जो दुआ का स्टाइल है ये डिफरेंट है। वो यहूदी थे और वो ऑलरेडी बहुत दुआ करना जानते थे, फिर भी उन्होंने यीशु से कहा हमें दुआ करना सिखा। तीसरी बात, हमें उनको ये सिखाना है कि खुदा के कलाम को कैसे स्टडी करना है। और आप हमेशा नए ईमानदार पर यह कहें कि वो यूहन्ना की इंजील से खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि यूहन्ना की इंजील मोहब्बत की इंजील है और जो यूहन्ना रसूल है ये मोहब्बत का रसूल है। और यूहन्ना की इंजील और यूहन्ना के खतूत और मुकाशफे की किताब जो यूहन्ना ने लिखी, आप इसमें बार बार खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत को एक्सप्रेस होते हुए देखेंगे। सुबह यूहन्ना की इंजील पढ़े और उसके बाद यूहन्ना के खतूत पढ़े और उसके बाद वो बाकी बाइबल का मुताला करें। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे आप कमजोरी को महसूस करते हैं, अगर आप 3, 4, या 5 दिन खाना ना खाएं तो फिर आप डिफेंसलेस हो जाते हैं, आप अपना दफा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बहुत दिन तक कलाम को ना खाएं तो इबलीस के मंसूबों के खिलाफ और दुनिया के हालात के खिलाफ के मुकाबले में आप डिफेंसलेस हो जाते हैं। चौथी बात, चर्च को और न्यू क्रिश्चियंस को फेलोशिप प्रोवाइड करें, या उनकी चर्च में चर्च के लोगों के साथ फेलोशिप होनी चाहिए। और फेलोशिप का यह मतलब नहीं कि इबादत वो मीटिंग में आए या प्रेयर मीटिंग में आए। फेलोशिप एक ऐसा टाइम है जो आप इकट्ठे गुजार सकें, क्वालिटी टाइम, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें, शायद एक दूसरे के साथ आप चाय पी सकें, खाना खा सकें। और इसको हम यूं कहते हैं कि अपनी लाइफ को दूसरों की जिंदगियों में इन्वेस्ट करना। और कहीं काउंसलिंग की जरूरत है, आप उनकी रहनुमाई कर सकें, काउंसल कर सकें। और जहां कहीं आपको हेल्प की जरूरत है, दूसरे आपकी हेल्प कर सकें। तो चर्चेज में एक फेलोशिप का प्रोग्राम या फेलोशिप की जगह होनी चाहिए जहां पर ईमानदार प्रेयर और बाइबल स्टडी और इबादत के अलावा पर्सनली एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बैठ सकें, रफाकत रख सकें, बातचीत कर सकें, फेलोशिप कर सकें। नंबर 5, चर्च को यह सिखाने की जरूरत है कि वर्शिप कैसे करनी है। और अक्सर कलीसियाओं में हम गीत गाते हैं, हम तो सुना करते हैं, और वर्शिप बहुत कम की जाती है। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता जो रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करें। खुदा चर्च में स्ट्रांग वर्शिप को पसंद करता है। और जब हम वर्शिप में मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ ही पाकरू की कुवत और पाकरू का जोर जो है हमारी जिंदगी में मूव करता और फ्लो करता है। जबूर 22 उसकी 3 याद में लिखा है, खुदा बनी इसराइल की हमदो सना पे तख्त नशीं है। और 100 जबूर उसकी 1 याद में लिखा है कि आए उम्मतों, खुदा उनके हजूर में तालियां बजाओ, खुशी के साथ गाओ, हमदो स्ताइश करो। चर्च में जब तक आप अपने लोगों को सिखाएंगे नहीं वर्शिप करना, आप कभी वर्शिप के माहौल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कामयाब हो जाते हैं वर्शिप का माहौल क्रिएट करने में, तो आप बहुत सी हीलिंग्स और मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। पहली चीज जो वर्शिप में होनी चाहिए वो है कि स्पॉन्टेनियस वर्शिप हो। उर्दू में क्या कहेंगे स्पॉन्टेनियस को? जी, एक ऐसी फौरी भी है और एक ऐसी चीज जो आपके अंदर से चश्मे की तरह जैसे पानी बाहर निकल रहा है। और स्पॉन्टेनियस वर्शिप हो, एक फ्लो हो वर्शिप का, और एक जैसे जैसे दरिया बहता है, पानी बहता है, एक एक बीच में ब्रेक्स ना हो। और जो भी मीटिंग लीड करने वाला है वो इस कदर पाकरू के लिए सेंसिटिव हो कि जो गीत, जो मूड, जो टेस्ट खुदा का रूह आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है, उसके फ्लो में आप वर्शिप कर सकें। ये नहीं कि आप चर्च में गए हैं तो बोर्ड में पहले से लिखा है आज हम ये 4 जबूर गाएंगे और इसके बाद मैसेज होगा। ये गर्चे मिशनों का मेथड है, ये हमदो सना हो सकती है, लेकिन ये वो वर्शिप नहीं जिसको जिसमें खुदा मूव कर सके, जिसको खुदा ब्लेस कर सके, या जिसकी हम बात कर रहे हैं पेंटिकॉस्टल रिवाइवल में जो चीज दोबारा से रिवाइव हुई है, वो वर्शिप भी है। तो स्पॉन्टेनियस वर्शिप हो, और जैसे जैसे पाकरू गाइड करता जाए, एक के बाद दूसरा गीत या जबूर या जो भी फ्लो है आप उसमें गाएं। और दूसरी चीज कि वर्शिप के फ्लो को मेंटेन करना चाहिए। और शायद प्रेजेंट वर्शिप की स्टडी में आपको यह बात बताई गई कि वर्शिप को बीच में ब्रेक नहीं कर, हम ये गीत गाएंगे, अब हम ये गाना गाएंगे या ये सॉन्ग हम गाएंगे, ये भी नहीं बीच में कहना। जब आप वर्शिप कर रहे हैं तो मीटिंग लीड करने वाला है उसको पाकरू के साथ ऐसे सेंसिटिव होना चाहिए कि वो जब एक गीत खत्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा शुरू करें और जो सारा चर्च है उनको फॉलो करें। और इसमें आपको यह भी देखना चाहिए कि जिस जगह पे आप एक गीत छोड़ रहे हैं उसी जगह से अगला गीत शुरू हो। जिस मूड में, जिस स्टाइल में, जिस रिदम में, جس بیٹ میں، جس فلو میں آپ پہلے گیت کو لے کے جا رہے ہیں، اسی میں آپ دوسرے گیت کو بھی، پھر تیسرے کو، یعنی نیچے سے آپ اوپر کی طرف آپ موو کریں، تو پھر آپ ورشپ کو بلڈ اپ کرتے ہیں. اگر آپ ایسے گیت گاتے ہیں بار بار جس سے ورشپ بریک ہوتی ہے، اس کا موڈ بریک ہوتا ہے، وہ سننے والوں پہ کوئی ہیلدی افیکٹ نہیں دیتی ہے. اور مجھے یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں ایسے زبور یا گیت یا کیسٹس تیار ہوں جن میں ورشپ کی گئی ہو اور جن میں ورشپ کا فلو اور ریدم ہو. ہمارے پاس ایسے گیت یا زبور یا کیسٹ نہیں ہے. ہم گیت گاتے ہیں، زبور گاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اور ان میں کوئی اسپونٹینٹی نہیں ہے. ایک گایا، دو گایا، سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی فرق راگ میں ہے، کوئی فرق راگ میں ہے. یہ سننے والے کے اندر بھی یہ چیز پینیٹریٹ نہیں کرتی ہے. اور چرچ کو ایسے میوزک میں فلو کرنا چاہیے کیونکہ میوزک خدا نے اپنی ورشپ کے لیے کریٹ کیا ہے. میوزک بھی مخلوق ہے، کریشن ہے خدا کی. خدا نے خلق کیا میوزک کو تاکہ اس کی حمد و ثنا کی جائے اور اس کے نام کو اونچا کیا جائے. اس میں فلو کو لانا جو ہے اور پاکو کے ٹیسٹ کو لانا جو ہے وہ ضروری ہے. اب یہ سینسٹیوٹی جو ہے ورشپ لیڈ کرنے والے میں ہونی چاہیے، اور سیکنڈلی اپنے چرچ کو، چرچ ممبرس کو یہ بات سکھانے کی یا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب سب گیت گائیں، گیت گا رہے ہیں تو آپ بھی گیت گائیں، جب لوگ ورشپ کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنی آوازیں اس میں بلند کریں. تو ایک چرچ میں گیت گایا جا رہا ہے تو 100 لوگ گا رہے ہیں اور 20 لوگ بدھوؤں کی طرح بیٹھے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. دے شوڈ ڈو سم تھنگ. اگر آپ حمد و ثنا کرنے چرچ میں نہیں آئے تو آپ گھر میں ہی رہیں، پھر آپ کو چرچ میں آنے کی ضرورت نہیں. تاکہ پاکرو فلو کرے. جب آپ ورشپ میں فلو کرتے ہیں، اپنا دل اور ذہن اور مائنڈ آپ ورشپ میں خدا کے لیے کھولتے ہیں، پھر جب کلام کی باری آتی ہے خدا آپ کو بلیس کرتا ہے، خدا آپ کو چینج کرتا ہے، خدا آپ سے کلام کرتا ہے، پھر آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور آپ کے بدن اور روح اور جان شفا پاتے ہیں. جب اسپونٹینٹی ورشپ میں ہوگی اور پاک روح کے ردم اور فلو کو مینٹین کیا جائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ نمبر ون، خداوند کی حضوری ہمارے درمیان آئے گی. اور اٹس سو پریشس، خداوند کی حضوری اس قدر قیمتی ہے، پریشس ہے، آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے، آپ کسی اور چیز سے نہیں خرید سکتے. یہ ایک آنر ہے، پریولیج ہے جو خدا ایماندار کو دیتا ہے، وہ اپنی حضوری کو اندیلتا ہے. اٹس اے گریٹ بلیسنگ، خدا اپنے لوگوں کے درمیان آتا ہے. دوسری بات، جب اسپونٹینٹی ورشپ میں ہوگی، خدا آپ کو ٹچ کرے گا اور آپ خدا کو ٹچ کریں گے. انٹیمیسی جو ہم نے شروع میں سٹڈی کیا، نزدیکی قربت کو آپ اچھی ورشپ میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. نمبر تین، جب اسپونٹینٹی ورشپ میں ہوگی تو پاک روح کی نعمتیں اور آپ کی جو کالنگز ہیں اور آپ کی جو گفٹسنگ ہیں وہ ریلیز ہوں. گفٹس جو خدا نے آپ کو دیے ہیں وہ ریلیز ہوں گے، وہ موو کریں گے. نمبر چار، جب آپ ورشپ میں فلو کریں گے تو انوائنٹنگ آپ کی زندگی میں فلو کرے گی، مسا آپ کی زندگی میں سرایت کرے گا. اور نمبر پانچ، اور بڑی اہم چیز، کہ جب ورشپ میں فلو ہوگا، تازگی ہوگی، زندگی ہوگی، تو خدا کی زندگی اور قوت آپ میں منتقل ہوتی ہے. ایک نئی زندگی، فریشنس، تازگی آپ کی زندگی میں سرایت کرتی ہے. سو چرچ کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کیسے ورشپ کریں اور کیوں ورشپ کریں. نمبر 6، چرچ کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ گواہی دیں. ہر ایماندار کو گواہ ہونا چاہیے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے اور میرے گواہ ٹھہرو. پاک روح قوت کے لیے دیا گیا اور قوت گواہی کے لیے دی گئی. سم ٹائمز وی تھنک کہ قوت معجزات کرنے کے لیے دی گئی ہے. جب گواہی ہوگی تو معجزات آٹومیٹک ہوں گے. جب زندگیاں چینج ہوں گی، دل، ذہن، جذبات خداون کے لیے کھلیں گے، تو سائنز اینڈ ونڈرز اینڈ ہیلنگز اینڈ میریکلز آٹومیٹکلی ہوں گے. چرچ کو، چرچ کے ہر ممبر کو یہ سیکھنا چاہیے کہ گواہی کیسے دینی ہے، کس طرح سے میں دوسروں کو یسو کے بارے میں بتا سکتا ہوں. جو کام میری زندگی میں ہوا، कैसे मैं दूसरों के साथ उसको शेयर कर सकता हूं। बाइबल स्कॉलर्स हमें बताते हैं कि जब एक शख्स निजात पाता है, उसको निजात पाने के 48 घंटे के अंदर अंदर अपनी पहली गवाही दे देनी चाहिए। अगर आप इतनी जल्दी, जैसे जैसे FIR कटवाई जाती है 48 घंटे के अंदर, अगर आप इतनी जल्दी अपनी टेस्टमनी या विटनेस नहीं देंगे, आप उतने ही मिनिस्ट्री में आने में स्लो होंगे। खुदा के साथ आप चलने में जो आपकी पेस है वो स्लोअर होगी। ये कोई फॉर्मूला नहीं, मेरी बात में आप स्टर अप हो सकते हैं, बूस्ट अप हो सकते हैं, बट स्टिल एक जनरल, जहां तक पब्लिक का ताल्लुक है, निजात पाने के 2 दिन के अंदर अंदर किसी ने गेट समबडी और उसको आप यीशु मसीह के बारे में अपनी गवाही बताएं। कोई नहीं मिलता है तो जो नौकर आगे घर में काम करते हैं उसको गवाही शेयर करें, और कोई नहीं मिलता है फाइंड समबडी, गली का कोई बच्चे पकड़ने से खुदा यीशु मसीह के बारे में बताएं। इससे जो आपका शर्मीलापन है वो दूर होता है और एक मसीही लाइफस्टाइल की खूबसूरती आपकी जिंदगी में आती है। जब हम गवाही देते हैं, आप सोचेंगे गवाही देने क्या फायदे से, मुझे क्या फायदा मिलता है। सो एज यू विटनेस अबाउट क्राइस्ट, यू ग्रो इन क्राइस्ट। जब आप यीशु की गवाही देते हैं, आप यीशु में ग्रो करते हैं। दूसरे अल्फाज में, जो शख्स गवाही नहीं देता है वो ग्रो भी नहीं करता, बहुत स्लो उसकी ग्रोथ है, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता टॉर्टाइज की तरह स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करता है। दूसरी बात, जब आप गवाही देते हैं आप ईमान में ग्रो करते हैं, आपका ईमान और ज्यादा बढ़ता है। और जब हम गवाही देते हैं तो हमें इन बातों को याद रखना है कि हम जो गवाही दें वो मुवस्सर हो, इफेक्टिव हो, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, इफेक्टिव, और जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो वाज़ह हो। नंबर 2, हम अपने कल्चर और सोशल वैल्यूज को अंडरस्टैंड करते हुए या उनको अडॉप्ट करते हुए उसके मुताबिक गवाही दें। नंबर 3, जब आप गवाही देते हैं दूसरों को ऑफेंड ना करें, उनको इस बात की जरूरत का एहसास हो कि उनको निजात की जरूरत है, लेकिन अगर आप राइट अवे किसी से कहें कि तू गुनाहगार है, तू जहन्नम में जाएगा और तू बदकार है, और ये सरगट छोड़ दे और ये चीज छोड़ दे, और तू फिल्में देखना छोड़ दे, और तू जेवर पहनना छोड़ दे, कानों में से बालियां उतार दे, बाल अपने कटवा के छोटे कर ले, तो जब आप किसी को चेक करना शुरू करेंगे वो अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दे, और वो कहेगा ये फलां भी ऐसे करता है, इससे क्या फर्क, वो कई बातें ढूंढ लेगा, वो डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आएगा तो गंदगी खुद बहुत बाहर निकल जाएगी। आमीन। आप गंदगी को निकालने की कोशिश ना करें, आप गंदगी को पिन पॉइंट ना करें, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है। लेट हिम सी क्राइस्ट, द होलीनेस ऑफ क्राइस्ट, द लव ऑफ क्राइस्ट, द प्योरिटी ऑफ क्राइस्ट। उसे यीशु को देखने दें, उसे अपनी जिंदगी में यीशु को ले जाने दें। जब उसके दिल में यीशु उतरेगा, सारा गार्बेज बाहर निकल जाएगा, गंद बला उसकी जिंदगी में से बाहर निकल जाएगा। जब वो यीशु मसीह कुवत को, शख्सियत को, प्यार को, तर्स को देखेगा तो ये चीजें उसकी जिंदगी में से बाहर निकलेंगी। नंबर 7, चर्च में